दंडोत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी बेसुमार अथाह अगनत अतोलय ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलय। दसों पातशाहियों के ज्योत स्वरूप चवर तखत के मालिक शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। अभी अभी आदरणीय जसविंदर सिंह जी पासों बहुत ही सुंदर इलाही वाणी का कीर्तन सुन रहे थे। वाणी गुरु गुरु है वाणी विच वाणी अमृत सारे गुरवाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे। जो सिख गुरु की वाणी को हुक्म समझकर अपने जीवन में पालना करता है उसको तत्काल मोक्ष प्राप्त होता है। हुक्म मणिये होए परवान तक खसमे का महल पाईसी। साध संगत जी जैसा कि आप लोग हैं साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जो साक्षात परमात्मा हैं भल मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जन पर तख हर जिनकी पवित्र वाणी बावन अखरी आप सुन रहे हैं। बावन अखरी का पाठ बावन अखरी की कथा का विशेष महात्म है। जो व्यक्ति बावन अखरी की कथा को श्रद्धा भक्ति से सुनता है उसको गुरु महाराज दर्शन देते हैं उसको ब्रह्म ज्ञान होता है जन्म मरण से रहित हो जाता है परम पद आनंद को पा लेता है। ऐसी पवित्र वाणी है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जैसा कि आप कल रहाओ की पंक्ति में कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरे संतन की मन होए रवाला। गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरे संतन की मन होए रवाला के हे वाहे गुरु हे सचे पातशाह कर कृपा आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो एक ही दया करो एक ही मेहर करो कि ऐसा संत ऐसे महापुरुष जो आपके साथ जुड़े हैं उनके चरणों की मुझे धूल बना दो। कर कृपा प्रभु दीन दयाला वाहिगुरु को दीन दयाला इसलिए कहते हैं कि ये दीनों के ऊपर, दुखियों के ऊपर, गरीबों के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। अमीर दयाला हमने किसी ग्रंथों में नहीं पढ़ा है, घमंडी दयाला हमने नहीं पढ़ा है। हमेशा वाहिगुरु दीन दयाला, जो दुखी हैं, गरीब हैं, जिसको संसार ने अपमानित किया है, लताड़ा है, और वो गुरु के शरण में गया है या वाहिगुरु के शरण में गया है, वाहिगुरु उसकी मनोकामना को पूरा किए, इसीलिए उनको दीन दयाला कहते हैं। हे सच्चे पातशाह, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो सिर्फ इतना कृपा करना कि ऐसे संत महापुरुष के चरणों की धूल बना देना जो आपके साथ जुड़े हुए। ईरान का एक संत हुआ है शेख सादी, वो कहता है, सुरमा कुंतो खाक औलिया ताबा बीनी इब्तिदाता इंतहा। सुरमा कुंतो खाक औलिया, यदि तू ये चाहता है कि मौत से पहले पहले परम पद परमात्मा को पाले, आनंद को पाले, मोक्ष को पाले, जीवन की जो सबसे ऊंचाई है उसको प्राप्त करने, तो सिर्फ तुमको एक ही काम करना पड़ेगा कि सुरमा कुंतो खाक औलिया, कोई औलिया, कोई संत, कोई महापुरुष, कोई फकीर के चरणों की धूल बन जाए। क्योंकि साध संगत जी, जिसने वाहिगुरु का अनुभव किया है, जिसने दीदार किया है, वही दूसरे को दीदार करा सकता है, और कोई नहीं करा सकता। और संत हम उसी को कहते हैं जिसने वाहिगुरु का दर्शन किया है। नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक। हे वाहिगुरु, जो तुम्हारे चाकर हैं। यो तो साहेब गुरु नानक देव जी महाराज जो नारायण हैं, साक्षात परमात्मा हैं, और देखो नम्रता के कितने पुंज है वो हमें क्या बताते हैं अपने बारे में, के नीचा अंदर नीच जात नीची हो अत नीच, नानक तिनकै संग साथ वढ़िया स्यों क्या रीस, वड़े वड़े जो दिसह लोग तिनको व्यापै चिंता। नानक बगोयद जनतुरा तेरे चाकरा पाखा खाक। हे वाहिगुरु, जो आपके चाकर हैं, जो आपके प्रिय हैं, जो सिर्फ आपके हो गए हैं, उसके चरणों की मुझे धूल बना दो। अंतर जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगे मुको कर संतन की धूरे। हे वाहिगुरु, हमें संतों की धूल, संतों की चरणों का हमें वास दे दो। क्योंकि सात संगत जी, अपने प्रयास से कोई भी व्यक्ति कुछ भी बहुमूल्य चीज़ों को नहीं प्राप्त करता, उसको किसी न किसी को उस्ताद बनाना पड़ता है। और जो तुम्हें वाहिगुरु के दीदार में सहायक हो, जो ऐसे संत हैं, उनके पास तो हमें बिक ही जाना चाहिए। साध संगत जी, आगे साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, ये जो संसार है जो आप देख रहे हैं, आखिर इसको कोई बनाने वाला तो जरूर होगा ना। ये ठीक है, वो दिखता नहीं है, आप देखना कि जितने भी दरख्त हैं वो दरख्त दिखते हैं लेकिन जड़ें नहीं दिखती। लेकिन साथ संगत जी, जड़ों के बगैर दरख्त नहीं होता। दूध दिखता है, घी नहीं दिखता। लकड़ियां दिखती हैं, आग नहीं दिखता। लेकिन सगल वनस्पत मह बैसंतर, सगल दूध में घिया। ये जरूरी नहीं कि जो इन आंखों से दिखता हो वही सच हो, ये जरूरी नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आंखों से नहीं दिखता फिर भी होता है। कभी कभी पांव में दर्द होता है, दिखता नहीं है लेकिन होता है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, जैसे दरख्त को देखकर हमें अनुमान लगाना पड़ता है कि इसकी जड़ें जरूर होगी, कभी ना कभी बीज रहा होगा, वो बीज ही दरख्त का रूप धारण किया है। इसी तरह से इस जगत को देखकर, पहाड़ों को देखकर, नदियों को देखकर, फूलों को देखकर, ये सारे कायनात को देखकर एक अनुमान लगता है कि इसका बनाने वाला कोई ना कोई वाहिगुरु अवश्य होगा। श्लोक, निरंकार आकार आप, निर्गुण सरगुण एक, एक है एक बखाननो, नानक एक अनेक। निरंकार आकार आप, निरंकार, निरंकार का भाव है जिसका कोई आकार नहीं है। सूखम में जानव स्थूल। सात संग जी, जब महाप्रलय हो जाता है और महाप्रलय के बाद ईश्वर जब सृष्टि की रचना, संसार बनाने को चाहता है, तो जीवों के जो कर्म हैं वो ईश्वर को प्रेरित करते हैं। जैसे आप देखना, धरती में बहुत से पौधों के बीज गिरे होते हैं और जैसे ही बरसात आता है, बारिश होती है, चारों तरफ नए नए किस्म के पौधे आप ही उग जाता है। ऐसे ही जब जीवों के कर्म ईश्वर को प्रेरित करते हैं तो ईश्वर संकल्प करता है, एको हम बहु श्याम पर जाए, एक हूँ मैं अनेक हो जाऊँ। तो वो ईश्वर जो एक निराकार है, वो माया के द्वारा इस सृष्टि को, संसार को पैदा करता है। कैसे करता है इसके बारे में महापुरुष लोग, ब्रह्मज्ञानी लोग हमें ये बताते हैं कि परमात्मा माया के द्वारा, माया क्या है, तीन गुण को ही माया कहते हैं, रज गुण, तम गुण, सत गुण, एह तेरी माया। इस माया के द्वारा ईश्वर इस जगत को बनाता है। तीन गुणों से पांच सूक्ष्म महाभूत पैदा होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और पांच सूक्ष्म भूतों से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी बनता है, और इन पांचों से ये सारा संसार बनता है। पांच तत्व को तन रचियो, जानहु चतुर सुजान, जेहते उपजियो नानका, लीन ताहे में। ये सारा संसार पांच तत्वों से बना है, लेकिन पांच तत्वों के अंदर, तीन गुणों के अंदर जो शक्ति है वो अकाल पुरुष की है। निरंकार आकार आप, निरंकार जो परमात्मा है वो खुद आकार में आ जाता है। जैसे जल है और उसको फ्रिज कर दो तो बर्फ बन जाता है, और फिर हीट दो तो फिर जल बन जाता है। वास्तविक रूप जो है वो जल है। इसी तरह से परमात्मा का वास्तविक स्वरूप निर्गुण निराकार है, लेकिन समय समय पर निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण रूप धारण कर लेता है। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोहि। यो तो निर्गुण और सरगुण दोनों एक ही है। निरंकार आकार आप निर्गुण सरगुण एक, एक है एक बखाननो नानक एक अनेक। एक है एक बखाननो। सात संग जी, ईश्वर इसको किस प्रकार बनाता है? हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जैसे घड़ा है तो घड़ा को बनाने वाला कोई ना कोई अवश्य है। जैसे कपड़े हैं तो कपड़ों को बनाने वाला कोई ना कोई जरूर है। जैसे घड़ा है तो घड़ा कार्य है और मिट्टी कारण है, और दो प्रकार के कारण बनाए। यूं तो ये सब्जेक्ट कठिन है, लेकिन आप ध्यान से सुने, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति कोई साधारण बात नहीं है। घड़े को बनाने में एक तो मिट्टी कारण है, एक कुम्हार कारण है, लेकिन जो मिट्टी है वो घड़े के साथ साथ रहता है, और घड़े बन जाने के बाद कुम्हार अलग हो जाता है। कुम्हार डंडा धागा इसको निमित्त कारण कहते हैं, और मिट्टी को उपादान कारण कहते हैं। उपादान कारण जो है वो साथ साथ रहता है, और निमित्त कारण हट जाता है कार्य के बाद। लेकिन जब परमपिता परमात्मा अकाल पुरुष इस संसार को बनाता है तो परमात्मा आप ही निमित्त कारण है, आप ही उपादान कारण है। जैसे आप मकड़ी को देखना, मकड़ी जो है जब जाले को बनाता है तो जाले का जो मसाला है वो आप अंदर से निकालता है और आप ही उसको बुनता है। इसी तरह से ईश्वर जो है इस संसार का मसाला जो है वो आप जो है सूखम में जाना स्थूल, जो अति सूखम जो है निर्गुण निराकार परमात्मा वो आप ही अंदर से उसको निकालता है और आप ही बुनता है, और सारे के मत्थे पर कर्म लिखता है अपने हाथों से। कहते हैं स्वामी जी उसको तो बहुत टाइम लगता होगा, कितने कलम और कितने स्याही की जरूरत पड़ती होगी। नहीं, सिर्फ ईश्वर का संकल्प और सबके मत्थे में कर्म लिखा जाता है। जेहा विजय सोलुणे कर्मा संदड़ा खेत। जैसा जैसा उसने कर्म किया है वैसा वैसा उसको भुगतना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं स्वामी जी ने मैंने तो किसी का बुरा सोचा ही नहीं है। सत्संग जी, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। ईश्वर ने जिसके भाग्य में जो लिखा है उसके प्रति पूरा न्याय किया है। जब मनुष्य बुरा करता है या दुष्कर्म करता है या पाप करता है तो सोचता है कौन देख रहा है, लेकिन साथ संगत जी ये प्रकृति का नियम है कि जो हम प्रकृति को देंगे वही प्रकृति हमें अधिक करके लौटाता है। चार वेद छह शास्त्र में, चार वेद और छह शास्त्र को पढ़ लो तो दो ही बात मिलता है, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं। चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दो ही, सुख दिए सुख होत है, दुख दिए दुख हो। यदि आप ये चाहते हैं कि कोई मेरी निंदा ना करे, कोई ये नहीं चाहता कि मेरी कोई निंदा करे, तो तुम किसी की निंदा ना करो। यदि आप ये चाहते हैं कि हमको सारे लोग आदर करें, सारे लोग प्रेम करें, तो पहले ही तुम सारे को प्रेम करने लग जाओ। और एक फॉर्मूला बताता हूं, कोई कितना भी घमंडी होवे, तुम पहले जा करके झुके नमस्कार करो, वो ना चाहता हो अभी वो भी थोड़ा सा तो जरूर झुकूगा। चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दिए सुख होत है। यदि तुम सुख चाहते हो तो सुख बांटना शुरू कर दो। प्रकृति तुम्हें चारों तरफ से सुख ही सुख दूंगा, और दुख चाहते हो तो दुख बीज। इस धरती में यदि किकर का बीज डालेंगे तो कल जो है हजारों कांटे मिलना है, और यदि आम चाहिए पका हुआ, खास करके दशहरी रस वाला, तो वही दशहरी आम बीज डाल दो एक, कल हजारों आम मिलना है। अहकर करे सो अहकर पाए, कीता पाइए अपना सा घाल बुरी क्यों घालिए। जब अपना ही किया पाना है तो लोगों को दोष देने की क्या जरूरत। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि ये मूर्ख मनुष्य ईश्वर को भी दोषी बना देता है। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। जब जिंदगी में विपत्ति आता है ना, क्या बताओ मेरा समय ही ऐसा है, क्या बताओ ईश्वर हम पर नाराज है, काल ही और मेरा कर्म ही ऐसा है, काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इसीलिए सात संगत जी, कोई भी कर्म करने से पहले बड़ी सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी, क्योंकि वही बाद में मिलना है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं कि निरंकार आकार आप, निर्गुण सरगुण एक, एक है एक बखाननो, नानक एक अनेक। एक ही वाहेगुरु अनेक रूप धारण कर लेता है। जैसे सोना तो एक होता है लेकिन सुनियारा उसे चैनी बना देता है, गले का पता नहीं क्या बोलते हैं वो बना देते हैं, कड़ा बना देते हैं, अंगूठी बना देता है। सोना एक है लेकिन सो मैने मैनी ऑर्नामेंट्स जेवर बन जाते हैं। लेकिन विचार करके देखो तो रूप और नाम अलग हो जाता है, होता सोना ही है। इसी तरह से ये जो सारा संसार है, यह विश्व संसार तुम देख दे, यह हर का रूप है, हर रूप नजरी आया है, तो वाहेगुरु लेकिन हमको अलग अलग दिखता है। कोई स्त्री देखता है, कोई पुरुष देखता है, कोई बच्चा देखता है, कोई चोर देखता है, कोई साध देखता है, लेकिन जिसके ऊपर वाहेगुरु की कृपा है वो सब में एक का दर्शन करता है। साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के समय में जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध के समय में भाई घनैया जी सारे को जल पिलाते थे। सिखों ने आके शिकायत किया, महाराज आप भाई घनैया जी का जो है बीच बीच में उस्तत करते, ये बहुत अच्छा है, गुरुमुख है, ये है, लेकिन मैं नहीं मानता। बात क्या महाराज, वो तो दुश्मनों के साथ मिल गया है, लगता है उसने कुछ ना कुछ घूस खाया है, समझे, बिक गया है वो। ऐसा नहीं हो सकता, गुरु महाराज कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। चलो ठीक है, बुला लेते हैं। भाई घनैया जी को बुलाए, भाई घनैया जी से पूछते हैं कि भाई घनैया जी, बहुत तरह के कंप्लेन आ रहे हैं तुम्हारे ऊपर, टेलीफोन से लोग बता रहे हैं वो दुश्मनों से मिल गया है, कोई ईमेल भेज रहा है, कोई किस तरह के, कोई आके बता रहा है, क्या बात है। महाराज ऐसी तो कोई बात नहीं, पता चला आपने दुश्मनों को पानी पिलाया है। वहां पर भाई घनैया जी कहते हैं, सच्चे पातशाह, जब से आपने ये बताया है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे, लोका भ्रम ना भूलो। हे सच्चे पातशाह, आपने ये बताया है कि एक पिता एकस के हम बारंग, आपने हमें ये बताया है। तो जब भी कोई भी जल मांगता है तो मुझे नजर ही नहीं आता कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, सब में आपका ही दीदार करता हूं। क्या आप मुझको पानी मांगे तो मैं पानी ना दूं? सच्चे पातशाह, पानी क्या चीज होता है? आप प्राण मांगे तो मैं इसी क्षण आपको प्राण दे दूं, आप हुक्म करें। सत्संगत जी, साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भाई घनैया जी के निश्चय को देख कर के इतने प्रसन्न हुए, गले लगाए, कहते हैं, भाई घनैया, तो घायलों को जल ही सिर्फ नहीं पिलाना, जा मेरे से ये मलहम भी ले ले, पट्टी ले ले। उन लोगों मलहम पट्टी भी लगाए। सत्संगत जी, इसी तरह से साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, पौड़ी, ओवं गुरुमुख कियो अकारा, ओवं गुरुमुख कियो अकारा। ये सारा संसार ओंकार से पैदा हुआ है, ओंकार परमात्मा का सनातन नाम है, सबसे पुराना नाम है ओंकार। ओं गुरुमुख कियो अकारा, एकह सूत परोवन हारा। एक परमात्मा जगत को पैदा तो किया है लेकिन चेतन रूप से सबके अंदर समाया हुआ है। जैसे दूध में घी समाया है, लकड़ियों में अग्नि समाया है, जैसे माला में धागा समाया होता है, जैसे कपड़े में सूत समाया होता है, ऐसे ही सबके अंदर परमात्मा चेतन रूप से समाया हुआ है। एकह सूत परोवन हारा। यहाँ पर साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उपदेश कर रहे हैं कि वो जो प्रभु परमात्मा है, एक बिन दूसर सो ना चिनार, भंजन गढ़न समर्थ सदा प्रभ, जानत है करतार, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर। एक ही परमात्मा जो है खेल खेल में, यह प्रभु की लीला है, यह परपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आनना हो, विचार करके देखो तो और नहीं। आप देखना कभी कभी बच्चे रेते का ढेर हो तो दो चार बच्चे मिल करके बहुत मेहनत से घर बनाते हैं, रेते में ही दरवाजा घर का बनाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं बहुत मेहनत से, लेकिन जैसे ही माँ बुलाती है, शाम का वक्त होता है, माँ कहती है, बेटा आ जाओ, शाम हो गया है, रोटी छक ले, बस एक सेकंड में जो है हाथ से फेर देता है। इसी तरह से परमात्मा इस जगत को बना करके इस लीला को देखता रहता है, लेकिन जब शाम का वक्त हो जाता है, जब उसकी इच्छा होती है कि अब अनेक को एक में अपने मिला लेना है, बस एक सुनामी लहर, लाखों करोड़ों, कहते हैं जब महाप्रलय होता है तो सारी पृथ्वी पानी में मिल जाता है और पानी के अंदर एक आग पैदा होता है जो सारे पानी को सुखा देता है और उस अग्नि को हवा बुझा देती है और हवा शांत हो जाता है, सिर्फ खाली स्थान रह जाता है, सिर्फ निर्गुण निराकार वायु बचता है और कुछ नहीं। ऐसा शास्त्रों में इस प्रकार लिखा हुआ है। कबीर जी कहते हैं, निर्गुण तो है पिता हमारा, सरगुण मेरी महतारी, काको बंदव काको निंदव दोनों पर लोभारी। इस जो निर्गुण और सरगुण जो है, ये दोनों वाहेगुरु जो है आप, जब भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, जब भक्त प्रार्थना करता है सच्चे पातशाह आप गुरु नानक रूप में दर्शन दे दो, जैसा कि धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज ने किए थे, सच्चे पातशाह आप गुरु नानक रूप में दर्शन दो, आप प्रसादा छको। तो निर्गुण परमात्मा भक्तों के अधीन होकर के सगुण रूप धारण कर लेते हैं। भक्तों के अंदर इतनी क्षमता है कि निर्गुण परमात्मा को सगुण रूप होने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसा चाहे, भक्त में इतनी शक्ति है, भक्त चाहे ना तो परमात्मा को, परमात्मा से हल भी चलवा लेता है। आपने देखा नहीं धना जट को, क्या हमने आपने आपको रोटी खिलाना है दूध पिलाना है तो खेती कौन करोगा, हमारा हल भी तो चला। देखो ये भक्तों की कैसी लीला, और परमात्मा उसके हल भी चला रहे हैं। भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए परमात्मा सब कुछ कर लेता है, सगुण रूप धारण कर लेता है। और ऐसी जब दृष्टि देती है परमात्मा भक्तों को, तो बंदे में क्या, कुत्ते में भी नामदेव को दिख रहा है परमात्मा। जब रोटी लेकर के कुत्ते ने भागा थाली से, तो कटोरी में घी लेकर के जो है पीछे पीछे दौड़े, हे वाहेगुरु तू सूखी रोटी खाएगा, मैं चुपड़ी खाता हूँ और तू सूखी खाएगा, कम से कम मुझको जो है चुपड़ लेने दे। नामदेव जी को कुत्ते में परमात्मा दिखता, हमें इंसान में भी परमात्मा नहीं दिखता, हमें दुश्मन दिखता है, दोस्त दिखता है, अमीर दिखता है, गरीब दिखता है, स्त्री दिखता है, पुरुष दिखता है, सो मेनी थिंग्स दिखता है अज्ञानता के कारण। यदि वाहेगुरु की कृपा हो जाए तो फिर एक दिखता है, निराधार निरंकार अलख लखाया, होया एकंकार आप उपाया, ओंकार आकार चलत रचाया। ऐसा भाई गुरदास जी कहते हैं कि जो ओंकार स्वरूप परमात्मा निर्गुण निराकार है वो आप सगुण रूप धारण कर लेता है। ओं गुरुमुख कियो अकारा, एकह सूत परोवन हारा, भिन्न भिन्न त्रैगुण विस्थारम, तीनों गुणों के द्वारा परमात्मा इस संसार का विस्तार करता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर तीनों गुण होता है। जब मनुष्य को सोने का ज़्यादा जी करे, ज़्यादा नींद आवे, आलस्य आवे, तो समझ जाओ उस वेले तमोगुण ज़्यादा है। जिस वक्त मन चंचल हो, जिन मन होर मुख होर, मनस सकिम बचत सकिम, मन भाग रहा हो, उस वेले मनुष्य के अंदर रजोगुण ज़्यादा होता है। और जिस वक्त भजन करने का जी करे, ध्यान करने का जी करे, गुरबानी सुनने का जी करे, तो समझ जाओ उस वेले सतोगुण ज़्यादा है। तमोगुण में मूढ़ता, आलस्य, प्रमाद, रजोगुण में चंचलता, और सतोगुण में ज्ञान होता है, शांति होती है, प्रभु के चरणों में प्रीति होता है। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं भिन्न भिन्न त्रैगुण विस्तार, तीनों गुणों को विस्तार किया है परमात्मा ने, और तीनों गुण हमेशा व्यक्ति के अंदर होता है। कोई व्यक्ति इस संसार में चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं पूरा हूँ। आदरणीय गुरमेल सिंह जी, दो दिन पहले हम सैर करने के लिए जा रहे थे, तो कहते हैं कि स्वामी जी एक साधु थे, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, उनके पास एक वैश्या आई और पूछती है, उनके चेले भी बैठे थे, कहते हैं आपकी दाढ़ी अच्छी है या हमारे कुत्ते की पूछ अच्छी है। वो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष कहते हैं, बेटी समय आएगा तो मैं बताऊंगा। वो चली गई, क्योंकि महापुरुष तो सबको अपनी बेटी बहन समझते हैं। समान उम्र वाले को बहन, अपने से छोटी को बेटी, अपने से बड़े को माँ, ऐसी दृष्टि होती है। साथ संगत जी, जब उस महापुरुष का शरीर शांत होने का टाइम आ गया, अपने चेले को बोला कि ऐसा करो, वो जो स्त्री आई थी ना मेरे पास, उसको बुला के ले आओ। सारे चेलों ने कहा कि वो तो वैश्या है, उसको इस वक्त बुला रहे हैं। लेकिन चेले लोगों का तो हुक्म मानना होता है, उसने बुला के लाया। वहां पर महापुरुष कहते हैं, बेटी तुमने एक प्रश्न किया था किसी समय में कि आपकी दाढ़ी चंगी है या हमारे कुत्ते की पूंछ चंगी है। बेटी मैं आज कह सकता हूं कि मेरी दाढ़ी चंगी है तेरे कुत्ते की पूंछ से। वो वैश्या पूछती है कि महापुरुष, ये प्रश्न का उत्तर उस वक्त आपने क्यों नहीं दिया। बेटी मैं इसलिए नहीं दिया कि इस मन का कोई पता नहीं है। ये मन जो है कोई पता नहीं था, क्योंकि अब मेरा शरीर शांत हो रहा है, अब एक निरंकार में लय हो रहा हूं मैं, तो अब दावे के साथ कह सकता हूं। हर एक व्यक्ति के अंदर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण होता है। किस वक्त रजोगुण प्रबल हो जाए और ये मन किसके साथ आसक्त हो जाए, कह नहीं सकते। तीनों गुण हमेशा बॉडी में होता है। इसीलिए सात संगत जी, ये व्यक्ति को पता नहीं चलता, घमंड नहीं कर सकता आदमी के मैं पूरा हूं। पूरा तो एक गुरु है, पूरा तो एक वाहिगुरु है। इस संसार में पूरा और कोई भी नहीं। हां, जब कोई व्यक्ति गुरु वाला हो जाता है और गुरु वाला होने के बाद जब किसी टाइम में वो गिरने लगता है, तो गुरु आप हाथ देके बचा लेते हैं। जैसे साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भाई जोगा को बचाए थे। निर्गुण ते सरगुण दृष्टारंग, निर्गुण दिखता नहीं है लेकिन होता अवश्य है। दरख्तों की जड़ें नहीं दिखती लेकिन जड़ों के बगैर दरख्त नहीं हो सकता। इसी तरह संसार दिखता है लेकिन संसार का बनाने वाला नहीं दिखता। लेकिन आपको अनुमान करना पड़ेगा कि आखिर कोई ना कोई इस ब्रह्मांड को, नदियां, पहाड़, इन सबको बनाने वाला तो कोई ना कोई है ना, और वो है कौन? वो है जो सबके अंदर चेतन रूप से है। सब है घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, जो तुम्हारे श्वास को अंदर बाहर ले जा रहा है, उसी ने ये सारा कायनात को बनाया है। निर्गुण ते सरगुण दृष्टारंग, सगल भांत कर करह उपायो। ये सगल भांत कर, अनेक अनेक तरह का, ये संसार में देखो आप, पंछियों को देखो, उसके रंगों को देखो, परमात्मा ने कैसा बनाया है। जब मोर नृत्य करता है उस वक्त उसको देखो, कितने रंग बिरंगे सुनहरे रंग होते हैं। वृक्षों को देखो, सागर को देखो, पहाड़ों को देखो, बादलों को मंडराते देखो, और यहाँ पर इस जगत में जो सब कुछ जो लीला हो रहा है, जो खूबसूरती है, जो भी कुछ है इस संसार को, उसको देख करके अनुमान लगाओ कि इसके पीछे इस सारी सुंदरता का कारण वाहिगुरु है। जगत इतना सुंदर है तो इसके बनाने वाला कितना सुंदर होगा। सगल भांत कर करह उपायो, जन्म मरण मन मोह बढ़ायो। और वाहिगुरु ने जन्म और मौत, जन्मंग तब मरणंग, जन्म ही मरण का कारण है। दोह भात ते आप निरारा निरारा नानक अंतना पारा वाला। जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वो दोनों भातों से न्यारा है, अलेप है वो। वो क्या है उसके बारे में कोई कह नहीं सकता, वह अलेप है। सब कुछ पैदा करके सब कुछ बना करके वो अलग है, बियॉन्ड है। दैट विच रिमेन्स ओनली, वो बचा रहता है, सबसे जो है अलग अलग सा रहता है। उस वाहिगुरु के बारे में कोई भी व्यक्ति वर्णन नहीं कर सकता। वेद भी उसको नेति नेति कहा है, न इति न इति न इति, कोई अंत नहीं उसका, बेअंत है वो, बेअंत है। दोहु भात ते आप निरारा नानक अंतना पारावा है। वहाँ पर साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो जो वाहिगुरु परमात्मा है, आपे आप निरंजना जिन आप उपाया, आपे खेल रचायुन सब जगत सबाया, त्रैगुण आप सृजियन माया मोह बधाया। ये सारा जो परमात्मा है व्यक्ति को पैदा करके माया मोह में फंसा के रखा, मेरा तेरा हानि लाभ। और जो व्यक्ति इसमें फंस जाता है, बनाने वाले को याद नहीं रखता, वो पश्चाताप कर। साध संगत जी मौत से पहले पहले एक वाहिगुरु को चेते रखें, उसको चेते रखने से लोक सुखिये परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।